پارہ شروع ہوتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ محبت ہی نہیں رکھتا اس سے جو پکار پکار کر برائی کا اظہار کرے۔ صرف ایک ہستی کو اجازت ہے اس بات کی اور وہ ہے مظلوم۔ کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ محبت نہیں کرتا، اب دو طرح کے رویے اٹھیں گے اس کے بعد۔ ایک بندہ بے چین ہو جائے گا، ہائے اللہ محبت نہیں کرتا، ہائے میں کہاں جاؤں گی پھر اگر اللہ نے مجھ سے محبت نہ کی۔ اور ایک دوسرا کردار ہے، وہ کہے گا اللہ محبت نہیں کرتا، اچھا نہیں کرتا تو پھر نہ کرے، ہو کیئرس، رف ایٹیچیوڈ۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے، کبھی زندگی میں ایک بار بھی آج تک خیال آیا کہ میرا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، یہ پوچھا کریں۔ جس سے بھی محبت ہوتی ہے نا، ہم اس کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں، کیوریس ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موضوع میں 148 میں جو موضوع چھیڑا وہ کیا ہے، جب کوئی تمہارے ساتھ برا معاملہ کرے یا تمہیں کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اس کو نشر نہ کرو، اس لیے کہ برائی برے اخلاق اور بری باتیں گندگی کی طرح ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک گندگی کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، ہر دن میں آپ 5-6 دفعہ کرتے ہوں گے، جتنی دفعہ کچن میں جا کر کھانا بنتا ہے، کیا کرتے ہیں، جلد سے جلد اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ڈھکن بند کرتے ہیں، لفافے میں کچرا بند کرتے ہیں اور اس کو ڈمپ کرنا چاہتے ہیں۔ کچن میں اگر کچرا جمع ہو جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ادھر سے ہی باہر پھینک دیا جائے۔ اگر کوئی کچرے سے بھرے ہوئے لفافے کو پورے گھر میں لے کر پھرے، ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، بیڈ رومز میں 2 دن پرانا کچرا لے کر پھرے، تو گھر کا ماحول کیسا ہوگا، سوچیے۔ کیا سارے گھر میں بدبو نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی کے عیب دیکھیں یا کوئی شخص ہمارے ساتھ برا معاملہ کرے اور ہم ہر دوسرے بندے کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ڈسکس کریں، تو اسی طرح کا تعفن، گندگی اور بدبو معاشرے میں پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، نرمی کے ساتھ ایسے معاملات کو ڈیل کیجئے، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی برا نہ کرے، اور آپ بھی کرتے ہیں مانے نہ مانے، ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے دوسرے نے کیا، آپ ہاتھ ہٹا لیتے تو تالی نہ بجتی، تالی تو دو ہاتھوں سے ہی بجتی ہے نا، آپ ہاتھ پیچھے کر لیں اگلے کا ہاتھ ہٹ جائے گا۔ تو یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے، اس میں آپ کسی سے نہ الجھیں تو کوئی آپ سے الجھ جائے گا۔ زندگی کا ایک اصول دیا گیا ان آیات میں کہ ہمارے ساتھ کوئی کیسا ہی معاملہ کیوں نہ کرے، کوئی جو چاہے کر دے، سب کے لیے ایڈوانس معافی، فار گیو فار گیٹ، سب کو معاف کر دو، کوئی کتنا مرضی برا کرے۔ اور آپ دیکھیں گے جب آپ کھلے دل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گے تو اللہ کے حکم سے کسی کے دل میں اگر اللہ کا خوف ہوگا تو وہ آپ کو کبھی نہیں ستائے گا۔ زندگی کا یہ اصول بنا لیں، یہ پہلی بات ہے۔ یہاں بیٹھ کر کہیے، جس نے مجھے ستایا میں نے اس کو معاف کیا، جس نے مجھے رلایا میں نے اس کو معاف کیا، جس نے مجھے دکھایا میں نے اس کو معاف کیا۔ جو مجھ سے حسد کرتا ہے، جو مجھ سے تقابل کرتا ہے، جو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے، جو میرے اس رستے میں فتنے اٹھاتا ہے، میں نے اس کو معاف کیا۔ اس کے لیے دل کہاں سے لائیں؟ میں ایک جملے میں اس کو سم اپ کر دیتی ہوں، خود کو مصروف کر لیں، کام میں اتنے مصروف ہو جائیں، سر کھجانے کو وقت نہیں ہے، کہاں بیٹھ کر لوگوں کے عیب ٹٹولیں، خوش رہیں گے، آپ کی خوشی کا راز ہے، یہ سارے رشتے جڑ جائیں گے جو ٹوٹے پھوٹے کٹے پھٹے چل رہے ہیں نا، جب آپ لوگوں کی برائیوں کو اگنور کریں۔ دیکھیں حضرت یوسف بھائیوں نے کیا نہ کیا، معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال اور 8 سال اوپر کے لگا لیجئے، 21 سال جب دشمن سامنے آئے تو کیا کیا، ان کے عیب کھولے، کچھ بھی تو نہیں کیا۔ تو آج یہاں بیٹھ کر نیت کیجئے، آپ یہاں سے بڑے ہلکے پھلکے جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر دوسرا موضوع، فتنہ انکار حدیث، آیت 150 میں، وہ لوگ جو اللہ کو تو مانے لیکن رسول کی حدیث کو نہ مانے، یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے جس کو انکار حدیث کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئی سچ ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا एक वक्त ऐसा आएगा कि एक शख्स जिसका पेट भरा हुआ होगा, यानी बड़ी तोंद वाला होगा, वो टेक लगाए हुए बैठा होगा और इसके पास हदीस आएगी तो कहेगा मेरे लिए कुरान ही काफ़ी है, मुझे हदीस नहीं चाहिए। तो आपने फरमाया कैसे लोगों से बच के रहना, ये वो लोग हैं जो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे आटे में से बाल निकलता है। ऐसे लोगों की नस्लों से फिर ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो वाकई दीन का हुलिया बिगाड़ देंगे। इसलिए याद रखिए, अब ये मेरे आपके लिए बात है, हम तो पूरी नमाज भी नहीं पढ़ सकते अगर हदीस को दीन से निकाल दें। अगर हदीस को दीन से निकाल दें तो क्या पूरे कुरान में वुज़ू का तरीका है? आप में से कितनी सिस्टर्स ने इस साल दौरे कुरान किया हमारे साथ? पूरे कुरान में कहीं पूरा वुज़ू का तरीका है, निकाह का पूरा तरीका आया, मरने के बाद उसको कैसे दफनाना कफनाना आया? पांच नमाजों के वक्त नामों के समेत कुरान में आए? तो दीन क्या हो गया, खिचड़ी पक गया? जैसे ये हॉल है ना, बिल्डिंग है पूरी, इस वक्त ऑर्गेनाइज है ना, ये कमरा वो कमरा उधर ये बाहर, आप बीच में से ये ढांचा निकाल दें ईंटों की सूरत में या लोहे की सूरत में, तो ये मलबे का ढेर है। एक जुमला लिख लें, हदीस और सीरत को दीन से निकाल दीजिए तो दीन मलबे का ढेर है। और आज के लोगों का सबसे बड़ा हदफ ये है, ये जिस पे एंड पे बात करूँगे ना, जहालत और जाहिलियत, वो यही है। जहालत है इल्म की कमी, जाहिलियत क्या है? एक होते हैं एंटी इस्लामिक थिंग्स और एक होती है अन इस्लामिक थिंग्स, दोनों का फ़र्क ले लेंगे आप इंशाल्लाह तो आपको बात समझ आ जाएगी। आज के दौर के लोगों का एंटी इस्लामिक परसेप्शन ये है कि हदीस को दीन से निकाल दो, ना नबी रहें, ना नबी की बातें रहें, ना हमें मर्जियां करनी पड़े। अपने तसव्वुर से गॉड का, खुदा का, अल्लाह का एक कॉन्सेप्ट बना लो, कोई उसको ईश्वर कह ले, कोई भगवान कह ले, कोई हनुमान कह ले, कोई गॉड कह दे, कोई अल्लाह कह दे, कोई जीसस कह दे, सारे ही एक है। वो कहते हैं ना, मंदिर मस्जिद इकड़ो नूर, सुना होगा आपने ऐसा शेर, कोई सारे दीनों को जमा कर कर एक ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करो और उसका नाम दीन इलाही रख दो। आज से 400 साल पहले एक फितना आया था, दीन अकबर, अकबरी दीन, यही था कि अल्लाह के नबी का दीन सिर्फ 1000 साल तक का था और वो ख़त्म हो गया, आज के बाद दीन ख़त्म। आप पढ़िए ज़रा, आज हमने तो अपनी किताबों में कभी ये पढ़ा भी नहीं था, कुरान ना पढ़ते तो पता भी ना चलता। इतना बड़ा फितना गुजर चुका है मुसलमानों पे, उस दीन में सब जायज़ था, शराब हलाल हो गई, बादशाह अकबर को खुदा के इख्तियारात हासिल हो गए, आज किसी को पता भी नहीं ये बातें। तो याद रखिए, असल जहालत ये है कि नबी के तरीक़े कार को ज़िंदगी से निकाल दो, सुन्नतों को ख़त्म करो, किक आउट करो और दीन अपनी मर्ज़ी का रख लो। तो इससे क्या पता चलता है कि हदीस को काट कर अगर दीन सीखा जा रहा है तो वो दीन नहीं है। अब आप सोचेंगे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं भाई, इससे क्या फ़ायदा होता है? तो नोट कीजिए एक जुमला, हर दौर के जो लोग अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ रखते हैं, बस अहले किताब, ये सब अल्लाह को पसंद करते हैं, इनको जो बुरा लगता है वो रसूल बुरा लगता है। यहूद का मसला अल्लाह के साथ बिगाड़ नहीं था, आज भी वो बड़े पाबंद लोग हैं अल्लाह के मामले में, लेकिन उनको नबी सल्लम अच्छे नहीं लगते थे। मुनाफिकीन का क्या, हमने तुर्रा पढ़ा पहले ही पारे के दूसरे रुकू में, वमिन अन्नास मन यकूल आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिर, ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर भी ईमान लाए और आखिरत पर भी लाए। तो ईमान सलासा में से कौन सा ईमान इसमें निकला हुआ है? ईमान बिर रसूल। तो लिख लीजिए, असल जहालत ये है कि रसूल का लाइफस्टाइल बंदे को बैकवर्ड लगे और ओल्ड डेटेड करे, अल्लाह बचा के रखे हम सबको इससे। इसलिए हर दौर में लोग ये चाहते हैं कि रसूल की रहनुमाई से आज़ाद होकर बस अपनी मर्ज़ी से दीन सीखे। इससे होगा क्या कि एक लफ्ज़ सलात, समझिएगा ज़रा मिसाल से, लफ्ज़ सलात है, सलात से मुराद पांच वक्त की नमाज है, ये किसने बताया आपको? रसूल ने बताया। आप रसूल को दीन से निकाल दीजिए तो लोग क्या कहेंगे, मैं तो बैठे बैठे नमाज़ें पढ़ लेती हूँ। कोई कहेगा सलात का मानी तो दुआ करना है, प्रे के मानी में प्रेयर, मैं तो बैठ बैठ के दुआ कर लेता हूँ। और जब आप लुगत खोलेंगे, डिक्शनरी खोलेंगे, तो नमाज का मतलब दुआ मिलेगा, तो आप कहेंगे कि मुझे तो नमाज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस ऐसी बात है। कई लोग कहते हैं मैं कारोबार करता हूँ ना, यही नमाज है, मैं बच्चों के लिए कमाई करती हूँ। बाज़ औरतें कहती हैं बच्चों के लिए घर साफ़ करती हूँ, क्या ये मेरी नमाज़ें नहीं हैं? तो याद रखिए, असल नमाज़ 5 वक्त की नमाज़ जो थी वो अल्लाह के नबी ने बतानी थी। तो इस फितने को फैलाने वालों की ख्वाहिश क्या होती है कि अपनी मर्ज़ी का दीन रखें, अपने हिसाब से वो दीन को आसान करते हैं। हर दौर के मुनाफिकों का सबसे बड़ा मसला अल्लाह नहीं रसूल होता था। आज भी हमारा यही है, आज रसूल का लाइफ स्टाइल ले आए तो हम कहते हैं मौलवी। आज आपके मर्द टखनों सुनची शलवार क्यों नहीं करते? औरतों ने कर ली, क्यों लॉर्ड्स और पजामे और जो घुटनों से ऊंची शलवारें पहन ली? फैशन में ताकत है, सुन्नत में ताकत नहीं है। फैशन के नाम पे कपड़े फाड़ के और अपने आप को जैसा मर्जी पेश कर दो, तो सुन्नत के नाम पे कोई करे तो कहते हैं हाय ऐसा कैसे होगा। तो याद रखिए, ये बहुत बड़ी जहालत है जिसका इसमें ज़िक्र है। अल्लाह ताला ने इसी के ऊपर गौर व फिक्र की दावत दी कि तुम रसूल के तरीके और सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी से निकालोगे तो दीन बोझल होगा, आसान नहीं होगा। चलिए अपना मुहासबा करते हैं इन दुआयतों में। क्या मुझे दूसरों की बुराइयों का जब पता चलता है तो मैं इसको नशर करती हूँ? जब मुझे किसी का कोई ऐप मालूम हो जाता है तो क्या मैं उसकी पर्दापोशी करती हूँ? यह अब आप खुद से पूछिए। जब कोई मुझसे जहालत से पेश आता है तो क्या मैं इसका जवाब जहालत से देती हूँ? क्या मैं माफ़ी और दरगुजर का रवैया इख्तियार करती हूँ? क्या मैं कुरान के साथ हदीस को भी अहम समझती हूँ? क्या मैं वो मुतालबात तो नहीं करती जो मेरी औकात से भरे हुए हों? क्या मैं ये तो नहीं कहती कि मेरा दिल ईमान की बात को कबूल करने से महफूज है? दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे दिल को ऐसी सारी नेगेटिव चीज़ों से महफूज रखे। बड़ी सख्त कैफियत होती है, और जब ये कैफियत आती है तो याद रखे कि बंदा अपना नफ़ा नुकसान भी भूल जाता है। इसी बारे में तो यहूद की गुस्ताखियों और नाफरमानियों की एक लंबी लिस्ट थी जो आगे अब आ रही है। हज़रत ईसा के मामले में उन्होंने दूसरी चीज़ों का क्या ज़िक्र किया? यहाँ एक चीज़ का ज़िक्र है, सूद। अल्लाह ताला कहते हैं कि यहूद ने सूद लेना देना शुरू कर दिया, हालांकि इससे इनको मना किया गया था। आज अगर हम एक नज़र डालें तो पूरी दुनिया सूद की लपेट में है कि नहीं? इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। हालांकि सूद का कारोबार ना तो इस्लाम से मैच करता है, ना यहूदियत से था, ना नसरानियत से था। वो लोग जो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं वो समझते हैं कि आज के दौर में सूद से बचना मुश्किल और नामुमकिन है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो इसमें चंद लोगों का हाथ है जिनके आगे पूरी की पूरी हुकूमतें गिरवी रखी हुई हैं। जी, इनका ताल्लुक एक ख़ानदान से है। तकरीबन कहते हैं पूरी दुनिया का माल 200 लोगों के हाथ में इस वक्त। लेकिन बात यह है कि इस्लाम ने सूद से मना किया है तो पिछली शरीयतों ने भी सूद को हराम करार दिया। असल चीज़ थी कि रुपये पैसे की जगह सोना चांदी चलता था। ये आपको करेंसी से कोई दिलचस्पी है? ये तो मशहूर है ना, डॉलर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये क्या है? कागज़ का एक टुकड़ा जिस पे आप मोहर लगाते हैं तो वो पाकिस्तान के 100 रुपये के बराबर था आज से 8 माह पहले तकरीबन। आज वो हो गया 160 रुपये का तकरीबन। ये क्या हुआ? क्या स्याही महंगी हो गई है या कागज़ महंगा हो गया? आप मोहर लगाएं तो वो रुपया बनता है, अमेरिका वाले लगाते हैं तो डॉलर बनता है, यूके वाले लगाते हैं तो पाउंड बनता है, नॉर्वे वाले लगाते हैं तो वो क्रोन बनता है। एक ही कॉस्ट है सबकी। ये है मोनोपोली, ये है असल में इस वक्त पूरी दुनिया के डिसऑर्डर की वजह। इकोनॉमिकल टेररिज्म का शिकार है ये दुनिया। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम खुद पढ़े लिखे लोग आगे आएं और दीन के इकोनॉमिकल सिस्टम को, इस्लाम के को समझें और इसको दुनिया में आम करें। लेकिन बहरहाल आज ये ख़त्म नहीं होगा, अमीर अमीर तर होता जाएगा, गरीब गरीब तर होता जाएगा। आज के दौर में जो सिक्के हैं वो स्टील या लोहे के सिक्के हैं, पहले दौर में सोने और चांदी के होते थे। इससे फ़ायदा ये होता था कि इंसान दुनिया के किसी खित्ते में चला जाए उसकी जेब में सोने का सिक्का होता था, हर जगह मुल्क में सोने की कीमत पे उसको जाके एक्सचेंज करवा लेता था। तो फिर अमेरिका का एक्सचेंज रेट भी वही था जो पाकिस्तान का था, वही ऑस्ट्रेलिया में जाके था, पूरी दुनिया में एक ही करेंसी चलती थी। ये तो आज से कुछ 100 साल पहले की कहानी, अब 125 साल हो गया होगा। कितने खूबसूरत तरीके से कुछ ख़ानदानों ने इसको चेंज किया। और आहिस्ता आहिस्ता सोना सारा खुद लिया। ये मैंने पूरा बयान किया हुआ डिटेल से, मेरा सबीलुल जन्ना में भी आप सुनेंगे कैसे ये कागज़ के नोटों पे दुनिया आई, ये बैंकिंग सिस्टम कहाँ से आ गया। एक चेकबुक इशू करके नोट सारे आपके वो ले जाते हैं, सोना चांदी उन्होंने अपने पास रखा, आपको मोहरें दे दी। ये सब मोनोपोलीज़ है, ये जहालत है आज की। तो आज की एक बहुत बड़ी जहालत आज का इकोनॉमिकल सिस्टम है। ज़रूरत है मुसलमानों को इकोनॉमिक्स में पढ़ने की, इस्लामिक इकोनॉमिक्स पढ़िए और उसको आगे लाइए, अपने बैंक बनाइए। आपके मुल्कों से ये सिस्टम इतना स्ट्रांगली ऊपर जाए कि दूसरे लोग खुद इसको मानने पे मजबूर हो जाएं। सवाल कीजिए, क्या उस लेन देन से सिर्फ यहूद को मना किया गया था या हम मुसलमानों को भी? क्या मुझे यकीन है कि इस्लाम में सूद का लेन देन हराम है? क्या मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि सूदी लेन देन के साथ कोई मुल्क कोई कौम फलाह नहीं पा सकती? क्या मैं किसी भी तरह से सूद के लेन देन का शिकार तो नहीं हूँ? एक हदीस में कि सूद की वजह से चार लोगों पर लानत है। लानत का मतलब यह अल्लाह की रहमत से दूरी। सूद खाने वाला, खिलाने वाला, इस बात को लिखने वाला और इसकी गवाही देने वाला। तो हर चीज़ में जिसमें सूद होगा वो इन चार में से किसी कैटेगरी में आएगी, उसकी जॉब करना जायज़ नहीं है। आप में से भी अगर कोई बच्ची इकोनॉमिक्स पढ़ रही है तो कल अपने मुस्तकबिल के लिए सोच के जॉब ढूँढे। कोई इंटरेस्ट बेस्ड जॉब इस्लाम में अलाउड नहीं है, अनलेस ये कि आप उसको किसी भी तरीके से बदलवा सकें। हम सबको अपना मुहासवा करना है, कहीं हम ऐसी चीज़ों का शिकार होकर अल्लाह की रहमत से दूर तो नहीं हुए। याद रखिए, दुनिया में अल्लाह की रहमत की दूरी की क्या निशानियां हैं। नंबर एक, दिल बोझल रहता है। पूछिए, रह जाता दिल में उदासी का गलबा तो नहीं है? अंदेशे में रहता है बंदा, खौफ में रहता है, परेशानी में रहता है, डिप्रेशन, सांस की बीमारियां, घुटन, सब कुछ पास होकर भी इंसान इंजॉय नहीं कर पाता ज़िंदगी को। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कोई कमी है। सारी अलामतें हैं इस बात की कि इस बंदे के ऊपर अल्लाह की तरफ से लानत बरस गई और अल्लाह हमें अपनी लानतों से महफूज रखे। ये किताब दुनिया के तमाम इंसानों को पुकार पुकार कर कह रही है। इसमें हमारे लिए मुहासबे का नुक्ता है कि क्या मैं इर्द गिर्द वालों को इस्लाम का पैगाम पहुंचा चुकी हूं? क्या मैं इस बात से खौफजदा तो नहीं कि मैंने दीन की बात की तो लोग मुझे इंतहा पसंद कहेंगे? क्या मैं अपनी शिनाख्त मिटाने के दर पर हूं कि राह चलते किसी को पता ही ना चले कि मैं मुसलमान हूं? ये किताब इंसानियत के दुखों की दवा है, इसको लोगों तक हमने पहुँचाना है। बोलिए, इंशाल्लाह। शौरी ईमान लाने की ज़रूरत है, इस किताब को अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। ये तीसरा मेन टॉपिक था जहालत का इस बारे में। अब जो चौथा शुरू होगा उसको कहते हैं गलूफ। गलूफ आयत 175 में, पहले तो लफ्ज़ मेरे पीछे दोहराइए, गलूफ। कुछ लोग क्या कहते हैं? गुल्लू। गुल्लू नहीं होता, गलूफ। गलूफ क्या है? किसी की मोहब्बत या नफ़रत में हद से बढ़ जाना, इसके मुकाम को या बढ़ा देना या कम कर देना। इसी तरह अल्लाह ताला जब भी किसी नबी को भेजते हैं तो बहुत मोतदिल किस्म की शरीयत भेजते हैं, काबिल अमल दीन नज़र आता है। औरतों को औरतों की ज़िम्मेदारियाँ बताई जाती हैं, मर्दों को मर्दों की। हराम वाज़े होता है, हलाल वाज़े होता है, खुशी और गम के बेहतरीन पैमाने होते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग इंतहाई रवैयों का शिकार होते हैं, मुतवाज़न यानी बैलेंस शख्सियत नहीं रखते, जिसकी वजह से इधर उधर हो जाते हैं, दीन के अहकाम को उसकी जगह पर नहीं रखते। फिर नबियों के मामले में जो गलूफ किया वो है नसारा का। हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया, जानते हैं ना आप सब ये बातें, जबकि अल्लाह ताला ने उनको रसूल बनाकर भेजा था। और यहूद ने क्या किया? हज़रत ईसा का मुकाम नीचे गिरा दिया, दोनों भटक गए। आज मुसलमान क्या कर रहे हैं? आज हम मुसलमानों ने इस दीन का क्या हाल और हुलिया किया? आज हम अल्लाह के नबी के साथ क्या मामला कर रहे हैं? वो अल्लाह के रसूल थे, बशर थे, अल्लाह ने आम इंसानों से ऊंचा मुकाम रखा। लेकिन बशर थे, कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह और नबी को एक ही बना दो। जो अहद है वही अहमद बनकर मदीने में आया। नातें सुनी हुई हैं? काबे की अजमतों का मुनकर नहीं पर काबे से भी ऊंचा मीठे नबी का रोज़ा। सुनी हुई है नात जी? क्या ये गलूफ नहीं है? वो नबी जो आज भी है कल की भी जानता है। सिर्फ 5-6 नातों को अगर आप शऊर से सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि उम्मत मुस्लिमा का गलूफ क्या है। اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مت کرو ادھر ادھر. یاد رکھیے غلو ہمیشہ محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے, کبھی کوئی نفرت کی بنیاد پر غلو نہیں کرتا. اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نور سے بنے تھے. کیسے بنے تھے؟ یہ وہ تو انسان تھے, وہ بشر تھے. 3 بار سے زائد قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ عبد تھے, انسان تھے. اور عبد روح اور مٹی کے مجموعے کو کہتے ہیں. آج ہم بھی اللہ سے یہی دعا کریں کہ دین کا وہی تصور ہم پیش کریں جو اللہ کا پسندیدہ ہو, لوگوں کی اپنی مرضی کا نہیں, لوگوں کے فتووں کا نہیں. ایک ویڈیو ہے جب مجھے کسی نے بھیجی اور اسی موضوع پہ ہے. میں سمجھی کہ شادی کی موقع پہ ویڈیو ہے. ینگ بچی ہیں, بالکل ویڈنگ ڈریسز میں پوری دھلن کی طرح سے تیاری ہے, اور یہ جو گا رہی ہیں نا, یہ شادی کے گانے نہیں ہیں. میں سمجھی شادی کے گانوں کی مجھے کسی نے بھیج دی. یہ نبی کی بھی نعت نہیں پڑھ رہی, یہ حضرت علی کے قصیدے گا رہی ہیں, اور بیچ میں جو نعرے لگ رہے ہیں اور اللہ کی پناہ, اور دیکھیے جو بناوٹ اور جو ادائیں اور جو لفظ, یہاں میں اس ممبر سے نہیں آپ کو سنا سکتے. اتنا شرک ہے اس میں, اور لوگ اوپر سے بیلے دے رہے ہیں. آگے تو اور مردوں کے دیکھتے تھے نا, یہ لڑکی جو گا رہی ہے نا, آپ کو آواز نہیں آ رہی, یہ گانا نہیں گا رہی, اور دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی مغنی ہے, یہ کسی عام صحابی کے بارے میں قصیدے گا رہی ہے. یہ برداشت کر سکتے تھے اللہ کے نبی؟ صحابہ کے دور میں عورتیں اس طریقے سے اسٹیج پہ بیٹھ کے اور بیلیں لے رہے ہیں, اور وہ ساتھ ایک خاتون ہے, وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اونچی آواز سے اتنا لمبا نعرہ لگاتی ہیں, اور حال سے لوگ اس نعرے کے جواب میں بولتے ہیں. یہ غلو ہے. کون بیٹھے ادھر گرمی میں؟ کون آئے گرمی میں ادھر 2-2.5-3 گھنٹے؟ وہی آئے گا جس کو غلو نہیں, سچا دین چاہیے. تو یاد رکھیے کہ اس سے بچنا ہے انشاءاللہ. پھر آگے دیکھیے آیت 173 میں 2 لفظ ہیں, ایک ہے بندگی سے یار اور دوسرا ہے تکبر. یعنی اسلامی لباس, اسلامی رہن سہن, اسلامی اظہار کو اپنے لیے شرمندگی کا سبب سمجھنا. اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. کیا میں دین کی کسی چیز کو آر تو نہیں سمجھتی؟ کیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرمندگی تو محسوس نہیں کرتی؟ جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں تکبر کا شکار تو نہیں ہو جاتی؟ نماز پڑھنے کی بجائے میں جان تو نہیں چھڑانے لگتی؟ جس بندے میں بندگی آ جائے گی, سوچئے ذرا, میرے اندر آئی ہے کہ نہیں, آپ اپنے آپ سے خود پوچھ سکتے ہیں. جس بندے میں بندگی آ جائے گی وہ تو اللہ کی بات مانے گا, اور جس میں بندگی نہیں آئے گی اس میں تکبر ضرور آئے گا. آیت 175 کو دیکھے تو یہاں سے اللہ کی معرفت شروع ہوتی ہے. اللہ کی ذات پر یقین آ جاتا ہے, اللہ کی محبت پر بھی. اللہ کی ذات اتنی بڑی لگتی ہے کہ اپنا آپ ایک مکھی کے پر سے بھی چھوٹا لگتا ہے. جب بندے کو اتنی بڑی ذات کا یقین آ جاتا ہے تو اس کا لا محالہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بندے کو اپنا بہت چھوٹا لگتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میرے سے چھوٹا اس دنیا میں کوئی نہیں. پھر ایسا بندہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیتا ہے, پھر بندہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں. اس کو پتہ ہے کہ نہ میں اپنی مرضی سے آیا اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاؤں گا. پھر اسی کے حکموں پر زندگی گزارنا ہے. اس کے بعد اللہ اپنی رحمت کرتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے, اور یہی جنت کا راستہ ہے. سورۃ نساء بہت ہی خوبصورت مضمون پہ پوری ہوتی ہے کہ اللہ کی بندگی سے آر نہ محسوس کرو. اور جب سورۃ مائدہ شروع ہوتی ہے, مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو, ٹیبل کلاتھ, کھانا جس پر کھانا کھاتے ہیں. اس صورت میں حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں نے کھانے کا مطالبہ کیا تھا, اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتارے, یہ مطالبہ کیا تھا, اور کہتے تھے کہ اس میں کئی قسم کے کھانے ہو. صورت کے بالکل آخر میں یہ ذکر آئے گا. صورت مائدہ میں سب سے زیادہ احکامات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں کی صورت ہے, یہ بھی نوٹ کیجئے. آخری دور کی صورت ہے. حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ صورت مائدہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو, کیونکہ اس کے بعد کوئی اور صورتیں نازل نہیں ہوئیں. اس کی کوئی آیت منسوخ نہیں, اس کی ہر آیت محکم ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو, خیانت نہ کرو, اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں مگر خاندان کی بنیاد پر. بعض دفعہ دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا. गुनाह का काम है या बुराई का, हम सिर्फ ये सोच कर मदद करते हैं कि ये मेरी दोस्त है, मेरे ख़ानदान का मामला है। याद रखिए, अगर मामला नाफरमानी का है तो करने वाले को वो काम करने दीजिए, आप उसकी मदद नहीं कर सकते। मतलब मेहंदी की प्लेटें सजानी, नाचने डांस करने कूदने के लिए हॉल सजाने जाना चाहिए अपनी दोस्तों की शादियों पे? नहीं जाना चाहिए। झूठ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। साफ बता दें कि बुराई में तावन का हुक्म नहीं है, नेकी में तावन करो। और नेकी का तावन क्या होता है? अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, उसके घर में उसकी मदद करना, कोई बीमार है उसका खाना पका दीजिए, ये सब नेकी के काम है। अल्लाह ताला ने तो मुसलमानों को यही सिखाया कि अगर कोई पड़ोसी भूखा सो जाए तो तुम पर इसका वबाल आएगा। अल्लाह ताला हमें नेकी का तावन दे दे। ज़रा अपने लिए सवाल कीजिए, क्या मैं खैर और नेकी के कामों में तावन करती हूँ या फिर सिर्फ ख़ानदान और मुँह दिखावे के लिए काम करती हूँ? फिर इसी तरह एक आगे हुक्म आ रहा है, किस्मत का हाल मालूम करना तीरों से। मुशरिकीन मक्का का आलम क्या था कि वो किस्मत तीरों से मालूम करते थे। उन्होंने दो तीन किस्म के तीर रखे हुए थे। कोई काम करना होता तो तीर निकालते थे, एक तीर पे लिखा होता कर लो, दूसरे पे होता है कुछ ना करो, और तीसरा खाली होता। अगर वो तीर निकलता है जिसमें कर लो था तो काम कर लेते, जिस पे ना होता तो ना करते, और खाली तीर निकलता तो फिर दोबारा उसको दोहराते थे। इस्लाम इसको सट्टाबाजी कहता है, जुआ, गैमलिंग, मना कर दिया इसे। इसके बदले में इस्लाम ने हमें क्या दिया? इस्तखारा, खैर तलब करो, अल्लाह से मशवरा मांगो। आज लोग पामिस्ट्री करते हैं, हाथों की लकीरें दिखाते हैं, ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, सितारे सैारे कहाँ हैं, तो याद रखिए इस्लाम में ये मना है। 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होती अगर सिर्फ महज वक्त गुजारी के तौर पर अपनी दोस्तों में बैठकर हाथों की लकीरें देखी दिखाई गई। और अगर आपने किसी की बताई हुई बात पे यकीन कर लिया तो कहा कि उसने उस दीन और शरीयत का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। बैठ के 3 सेकंड तक तौबा कीजिए अगर पिछली ज़िंदगी में कुछ किया हुआ। स्कूल कॉलेजेस में तो अमूमन दोस्तों के साथ बैठकर ऐसी हरकतें हो ही जाती, किस किस ने की हुई हैं, मैं तो खुद इसकी गवाह हूँ। कॉलेज में ब्रेक टाइम में और छुट्टी के वक्त पे बैठकर यही कुछ तो हो रहा होता था। आप मुझे नहीं पता क्या करते हैं। बचिए, दुआ कीजिए कि ऐसा ना किया जाए कभी भी। फिर इसके बाद देखिए आयत 3 में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है कि यहूद ने यह बात कही कि अगर ये आयत तुम्हारी बजाय हम पर नाजिल होती तो हम इस दिन को ईद बनाते। कौन सी आयत? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। हज़रत उमर तक जब ये बात गई तो कहने लगे गम न करो, उस दिन जिसे ये आयत नाजिल हुई हमारी तो दो ईदें थीं, एक तो यौम अरफा था और दूसरा जुमे का दिन था। इतनी बड़ी खबर आज तक कभी हमने गौर भी नहीं किया होगा। मैंने कभी किसी को इस आयत का वजीफ़ा करते नहीं देखा गया कि आज मैं ये करूँ कि अल्लाह ने हम पर एक पूरा दीन दिया। हम भी वजीफ़ा करते हैं अपनी मर्ज़ी की आयतों का, अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। याद रखिए कि हज़रत नूह से लेकर इस्लाम का काफ़िला चलना शुरू हो गया था। हर दौर का नबी इस बात का मुंतज़िर था कि आखिरी नबी आए तो दीन पूरा हो, और ये ख्वाहिश पूरी हुई उम्मत मोहम्मदिया की सूरत में। शरीयत मुख्तलिफ रंग रूप धारती हुई जब इस उम्मत पे आई जिस पे आज मैं आप हैं, तो कह दिया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। क्या मुझे आपको इसका शऊर भी है? अल्लाह ने मुझे आपको एक खूबसूरत दीन में दाखिल किया, करना क्या कि हम भी पूरी इताअत करें। उदखुलु फिस्सिल्मी काफ़ा। और याद रखिए नेमत जब तक हाथ में नहीं आती वो नेमत नहीं लगती। असल बात यह है कि हम देखें कि हमारा आज हाल क्या है, हमारा अंजाम क्या है। अल्लाह के नबी दुनिया से जाते जाते कहकर गए कि लोगों तुम्हें कैसे दीन पर छोड़ के जा रहा हूँ जिसमें कोई वसत या उसकी गुंजाइश नहीं, कमी नहीं है, दीन पूरा था। आज जो नए काम करेंगे वो बिदत होंगी, मुहदस कहलाते हैं। तो हमेशा याद रखिए वही काम कीजिए जिस पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहर हो। क़यामत के दिन वो लोग हौज़े कौसर के पानी से महरूम कर दिए जाएंगे जो दीन में अपनी मर्ज़ी के इजाफे करते हैं। अल्लाह मुझे आपसे बचा के रखे। चलिए सवाल करते हैं खुद से, क्या मैं दीन इस्लाम की नेमत पे खुश हूँ? क्या मैं अपने आप को मुसलमान कहलाने पे फ़ख्र करती हूँ? क्या मैं अपना को फ़िरका वाराना नाम तो नहीं रखती? क्या मैं किस्मत का हाल तीरों से मालूम तो नहीं कराती? क्या मैं हाथ की लकीरों पे यकीन तो नहीं रखती? क्या मैं गैर अल्लाह के ज़बीहा खाने को अपने लिए हलाल समझती हूँ? मेरा लिए ये मुहासबे हमारे पाँव पकड़ने के लिए काफ़ी होगा। इसके बाद एक आयत 15 से 16 में हिदायत और नूर की बात है। क़ुरान को हिदायत और नूर कहा गया। आज भी जो लोग इस कुरान के बग़ैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो बहुत बड़ी नेमत से महरूम हैं। आप देखेंगे, अभी तो शुरू के दिन है ना, थोड़ा सा आगे जाकर देखिए, आपको लगेगा आपकी ज़िंदगी में रोशनी आ गई। एक छोटी सी मिसाल है, आप देखिए, आप गाड़ी में बैठते हैं ना तो आपको गाड़ी की लाइटें रास्ता दिखाती हैं, लेकिन जो बाहर से दूर से देख रहा होता है उसकी आँखों को वो लाइट चुभती है। आप इस्लाम की गाड़ी में बैठकर इस्लाम को देखेंगे, आपको इस्लाम बहुत खूबसूरत दिखेगा। जो गैरों की नज़र से, जाहिलियत की नज़र से इस्लाम को देखते हैं, उनको इस्लाम बड़ा बुरा लगता है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अंधेरों से निकाल दे और हमारे अंदर से हर वो चीज़ निकाल दे जो तुझे पसंद नहीं है। आयत 27-29 से आगे में काबिल और हाबिल का वाक़या। दो बेटे थे आदम के, हाबिल और काबिल, दोनों ने अल्लाह के रास्ते में कुछ कुर्बानी दी। एक ने बड़ी अच्छी नीयत से दी, उसकी कबूल हो गई। दूसरे की नीयत बुरी थी, उसकी कबूल ना हुई। बजाय इसके कि वो ये कहता कि मैं भी अच्छी नीयत कर लूँ, शैतान ने उसके दिल में हसद डाल दिया और इसी हसद में उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया तो अब करे क्या, पता ही नहीं था मुर्दों के साथ करते क्या हैं। परेशान था तो अल्लाह ने दिखाया उसको कि दो परिंदे आपस में लड़े, उसमें से एक ने दूसरे को चोंच मारी, वो मर गया। फिर उसने ज़मीन को रेत कर उसमें अपने मुर्दा कव्वे भाई को दफन किया। ये मंज़र देख कर उसको भी ख्याल आया कि मैं भी अपने भाई को दफन करूँ। फिर उसने भाई को दफन किया। क्या पता चला कि अल्लाह जानवरों से भी अच्छी बात सिखवा सकता है। इस पूरे वाक्य से क्या पता चलता है, हसद नहीं करना चाहिए। और आज भी दुनिया में जो शख्स कत्ल करता है उसका गुनाह काबिल को भी होता है। अब इस पे बहुत सारे वाक्या आते हैं, औरत थी, कोई बहन थी। आपको मुझे इससे कोई ज़रूरत नहीं बात करने की, बस इतना अपने लिए अमल लीजिए कि जो भी नेकी करें अच्छी नीयत से करें, तकवा ले लीजिए, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को ज़रूर कबूल करेगा। और दूसरी बात यह है कि तकब्बुर नहीं करना। और यहाँ से असल में कत्ल की बातें शुरू हो रही हैं। बनी इसराइल की तो तारीख कत्ल से भरी हुई है कि जब इंसान जानवरों की सतह पे आता है तो बुराई करने से नहीं शर्माता, हाँ उसके ज़ाहिर होने से खौफज़दा होता है। कत्ल का वो दरवाज़ा इंसानियत के लिए खुला कि बाद में अंबिया कराम कत्ल किए गए, नेक लोग कत्ल किए गए, आज भी कत्ल है। इससे एक और बात भी सीखने की है कि जो बुराई की इब्तदा करता है उसको हर दूसरे का गुनाह है। आपको फैशन निकालती हैं, दूसरे आपको देखकर वही गलत फैशन करेंगे, आपको भी गुनाह होगा। और आप एक अच्छा फैशन निकालें, अच्छा रिवाज डालें, दूसरे आपके बाद वो काम करेंगे, फ़ायदा होगा। आप खुद आ रही हैं ना अपनी दोस्त को ले आएँ, बस आपकी दोस्त की सारी ज़िंदगी की नेकियाँ आपके अकाउंट में जानी चाहेंगी, चाहे आप बाद में उसको कभी मिलें या ना मिलें। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने इसमें जाहिलियत की बात की, या हुक्मल जाहिलियत या वन, कल बात करेंगे इंशाल्लाह हम थोड़ी सी जाहिलियत पे भी। लेकिन आयत 50 का नंबर नोट कर लीजिए कि ये वो है जगह जहाँ पे जहालत का मौजू खुल कर आता है। चंद सवाल ले लीजिए जहालत से मुतल्लिक। इस्लाम से पहले के दौर को जाहिलियत कहते हैं। इस्लाम से पहले क्या आम था? नंबर एक, शायरी, आज भी है। इस्लाम से पहले सूद आम था, आज भी है। शराब आम थी, आज भी है। बेटों को अहमियत दी जाती थी, बेटों को ज़िबा कर दिया जाता, आज भी बेटियां ज़्यादा पसंदीदा नहीं होती। इस्लाम से पहले औरतें बनाव सिंगार करके बाहर फिरती थी, आज की औरतें भी फिरती हैं। क्या आज हमने भी इस्लाम के मुकाबले में जहालत को तो नहीं पसंद कर लिया? याद रखिए, जब आप इस्लाम के नाम पर गैर इस्लामी चीज़ों और उनके कल्चर रंग रख रखाव को कबूल करेंगे तो अल्लाह को यही बात पसंद नहीं कि आपा हुक्मल जाहिलियत या बोन। हम अपने जहनों को मغلوب कर चुके हैं। वी आर एम्बेरस्ड टू बी मुस्लिम, वी आर सॉरी टू बी मुस्लिम। इस जहनी गलबे का नाम है जाहिलियत। आप एंटी इस्लाम नहीं, आज भी गैर मुसलमानों ने इस्लाम को इतना नुकसान नहीं दिया जितना मुसलमानों में से बेअमल मुसलमानों ने इस्लाम को नुकसान दिया है। तो अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि हमारे अंदर से ऐसी सारी जहालत ख़त्म हो जाए। इस्लामिक आइडियोलॉजी को आम करना है, सहाबा की ज़िंदगी, उनके तर्ज़ ज़िंदगी को दिखाना है। चार दफ़ा लफ्ज़ है कुरान में जहालत का, इंशाल्लाह कल इस पर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन यहाँ पारे के एंड की तरफ पलटते हुए देखेंगे हम कि कुछ लोग मॉडर्न होना कहते हैं, غیر اسلامی ہونا. حالانکہ اسلام ماڈرن ہے, اس سے برعکس دوسری چیزیں غیر اسلامک جو ہیں وہ جاہلیت کی باتیں آتی ہیں. آج ہماری سوچ بدل دی گئی, ماڈرنائزیشن کامیاب, گوری چٹی بے پردہ عورت کو دکھائیں گے کہیں گے ہاؤ سکسیزفل شی از, اور کسی بیچاری کو دکھانا ہو تو کالے عبائے میں بچہ بھی رو رہا ہے ناک بھی بہہ رہا ہے کہتے ہیں ہائے بیچاری دیندار عورت. یہ پرسیپشن ہے, اس پہ انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے. حمیلۃ الجاہلیہ کل سورۃ فتح میں آئے گا آیت 26 میں, وہاں دیکھیں گے کہ جب سوچ جاہلیت کی ہوتی ہے تو ساری حمایتیں ہماری جاہلیت ہیں. آج بھی کچھ لوگ ویسٹرن سٹائل کو اتنا زیادہ پروموٹ کرتے ہیں کہ ان کو ہر خرابی مسلمانوں میں دکھتی ہے, اور حالانکہ اسلام میں غصت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مکھی تمہارے مشروب میں گرے تو پوری کو ڈبو کے نکال لو اور اس چیز کو پی لو. ہم کہتے توبہ توبہ توبہ, اتنی بری بات ہے. آج کی سائنس نے کہہ دیا ایسا کرو, کیونکہ مکھی کے ایک پر میں گندگی ہوتی ہے اور وہ بھاری ہوتا ہے, جب مکھی گرتی ہے نا وہ پر ڈالتی ہے, دوسرا پر ہلکا ہوتا ہے, اس کو ڈپ کرو گے تو اس کے جراثیم ختم ہوں گے. اب یہ اسلام کا پرسیپشن دکھائیے لوگوں کو, لوگ اس ایک مثال کو سن سن کے مسلمان ہو رہے ہیں کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے یہ بات بتائی تھی, ہمیں تو آج پتہ چلی ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نے اس کو بچانا ہے. پھر حکم الجاہلیہ, جب لیڈرشپ ہی ہماری غیر مسلم قوانین دینے لگے, جب ملک کا قانون ہی جمہوریت کے نام پہ غیر اسلامک طریقوں کا ہوگا تو کیا ہوگا. اور سورہ زاب میں آپ پڑھیں گے تبرج الجاہلیہ تلولا, اس پہ تو میرا لے ایک لفظ نہ بولوں. آج جتنی ایک مسلمان عورت تبرج کر کے جاہلیت کا نکلتی, اتنی تو گوری بھی نہیں نکلتی. دیکھیے گوریوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا, اتنا سا لاکٹ دور سے دکھے ہی نہ, لائٹ بیبی پنک لپسٹک, وائٹ ڈریس, اور وہ بھی کرائے کا لے کے آتے ہیں, دلہن تیار ہے. آج ہماری ایک دلہن سر سے پاؤں تک کیا پہنتی ہے اور کیا تبرج نہیں کرتی, بیروں سے لے کے ڈرائیوروں تک کیا سب نہیں دیکھتے, یہ سارا تبرج الجاہلیہ تلولا. تو اب یہ ہم خود دیکھیں گے کہ ہمارے اندر یہ سب کیا ہے. آج اگر عورت تبرج اور یہ جاہلیت کے طریقے چھوڑ دے کتنے گھر بن جائیں. اور اس کے بعد پھر آخر میں 72 سے 75 میں حضرت عیسیٰ کا صحیح مقام دکھایا گیا, کس طریقے سے ٹرینٹی پھیلی, کیسے ایک سے تین خدا ہو گئے. یہ باتیں علمی باتیں ہیں, اس پہ بہت وقت چاہیے. ہم تو صرف ایک اپنے لیے ایک عمل لے کر اس صفحہ پارے کو پڑھ رہے ہیں نا, لیکن یہ سب بتا رہا ہے کہ ہمیں مزید وقت لگانے کی ضرورت ہے. آج بھی اسلام میں جو کچھ بگاڑ ہے, مثلا ہم دیکھیے کہ ہمارے یہاں قل ہوتے ہیں میت کے, یہ اصل میں ہندوؤں کے تیجے کی ایک رسم ہے. آج کوئی مرتا ہے تو قرآن خوانی ہوتی ہے, سپارے لے لے کے پڑھتے ہیں. یہ ہندوؤں کی اس رسم کی پیروڈی ہے جس کو وہ وید پڑھتے تھے. 40واں ہوتا ہے, یہ 40واں کی اصل کیا ہے, ہندو دھرم میں ہے کہ 40 دن تک روح بھٹکتی رہتی ہے, پھر اس کو کھانا کھلایا جائے تو اس کو چین آتا ہے, پرکھوں کی روحیں. یہ برسی کا تصور کہاں سے آیا ہے, ہندو دھرم سے آیا ہے. تو یاد رکھیے اس پہ ہم مزید باتیں کریں گے, لیکن پارا الحمدللہ ہمارا پورا ہوا اس رنگ میں کہ ہم نے اس میں سے اپنے لیے جو عمل کی باتیں لینی تھی وہ لی ہیں. یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے ان ساری باتوں پہ غور و فکر آسان کر دے.